ओम शांति। जो आज का विषय है सफलता के ऊपर, व्यापारी नहीं परंतु कोई भी कार्य हो, संबंध हो या कुछ भी हो, तो सबको अंदर से ये लक्ष्य तो रहता ही है कि हमको सफलता 100% मिलनी चाहिए। और सभी दुआएं भी वही देते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, आप जो सोचो वो हो जाए, जैसे चाहिए वैसे हो जाए। चाहते तो सभी वही है, परंतु रियल सफलता मना जैसे आप देखिए, जैसे हम समझते हैं सोचते वैसे हर समय नहीं होता है, हर टाइम नहीं होता है, अनप्लान्ड हो जाता है, सडन भी हो जाता है, कुछ जो हमने कभी मन में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा वो हो जाता है। तो वे नॉट रियली प्रिपेयर्ड, अंदर से प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो लगेगा ये कैसे हो गया, अभी हमने सोचा एक और कुछ हो गया। तो कुछ भी हो जाए फिर भी अंदर तो प्रश्न के तूफान चलते वो ना हो, माना जैसे आप हर तूफान को आप तोहफा बना दिए, माना आप सफल हो, आपका जीवन सफल है, कुछ भी हो जाए घाटा पे पड़ जाए पर उसमें आपको लाभ दिखाई दे, लगता है इसमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता जरूर मिलेगा, इसमें कुछ कल्याण है, अच्छा ही हो रहा है और अच्छा होगा, तो इस प्रकार के विचार और समय पर आए, मना आप सफलता को कायम रख सकते हैं। कई लोग में जैसे सफल होने का, सफलता सक्सेसफुल होने का उनके अंदर हुनर रहता है, बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, परंतु सक्सेसफुल होने के बाद वो ऊपर तक पहुंचने के बाद फिर वहां स्थिर होके ऐसे ही मेंटेन करना, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। पहुंचना आसान है, जैसे कोई धन भी कमा ले, बहुत धन कमा ले, फिर उसके बाद उसको कैसे मैनेज करना। एक अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किए थे कोई, बीबीसी वाले जो टीवी चैनल है ना वो वाले, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि न्यूयॉर्क में एक आदमी वहां सबवे में सोता था, माना होमलेस व्यक्ति था, घर नहीं है, बारिश होता था, उनको अच्छी तरह कैमरा में जैसे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते वैसे डॉक्यूमेंट्री बनाया कि उनके ऊपर पूरा फोकस डाले, तो देखते हैं कि उनको बहुत सारा पैसे दे दिए बीबीसी वालों ने कि इनके पास एक पैसा नहीं है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो घर नहीं कुछ भी नहीं उनको बहुत सारा पैसे दे दो और देखो क्या करेंगे। पता नहीं बहुत सारे डॉलर्स उनको मिले, उससे वो घर भी बना सकता था, अच्छा उनका लाइफ भी बना सकता था। एक साल के बाद वो तो बहुत खुश हो गया, पैसे लेके तो खुश हो गया। तो एक साल के बाद एक टीवी इंटरव्यू में उनको बुलाया गया, बुला के उनको पूछा बताओ आपने कैसे आपका जीवन अभी कैसा है, आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो। तो उन्होंने कहा मैं तो सबवे में ही हूं, वहां नीचे रास्ते पर ही सो रहा हूं। अरे एक साल हो गया आपको पैसे इतने मिले बीबीसी से तो आप किसे रस्ते पे सो रहे हो। उन्होंने कहा पैसे पूरे खत्म हो गए, माना एक साल के अंदर जो भी पैसे मिले उससे अपनी उन्नति हो, एक घर तो मिले, कुछ भी नहीं अभी फिर से रस्ते पर, माना जो कुछ भी अपने पास है जो कुछ भी मिला है उसको सस्टेन करना, उसको कायम रखना, ये कला है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बस कुछ भी उसमें इतना भी नहीं कहां भी देना, एकदम पकड़ के बैठ जाना है, मैं ये नहीं बोल रही हूं। परंतु लोभवश कभी किसी को दिखाने के लिए ऐसे करके टू मच में चले जाते हैं ना, तो जैसे नम्रता है और उसके साथ साथ इकोनॉमी है, ये फिर अपना नहीं सकेंगे। एक कोई बता रहे थे मुझे कि एक पूरा एशिया में रिचेस्ट आदमी है, रिचेस्ट मना रिचेस्ट, वो फ्लाइट में जा रहे थे तो वो इकोनॉमी में बैठे थे, तो कोई उनको मिले, उन्होंने कहा आप तो एशिया के रिचेस्ट हो ना, वो चाइना वाला है, तो आप कैसे इकोनॉमी में जा रहे, आप बिजनेस क्लास में जाना होता है ना। तो उन्होंने कहा मैं रिच कैसे हूं अभी, अमीर कैसे हूं, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास में नहीं ट्रैवल करता हूं, इकोनॉमी में ट्रैवल करता हूं, इसलिए अभी तक मैं रिच हूं। तो सदा जैसे दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, इस पर हमारे दिमाग होंगे और उस पर चलेंगे तो कहां भी पहुंचेंगे। चलो पैसे की बात ही नहीं, नाम भी कमा लेंगे। कहते जब नाम कमाने के बाद उसको टू लूज इट इज ऑल्सो वेरी इजी। सब मेरे को याद है हमारे जो स्कूल था ना जब मैं पढ़ती थी, और स्कूल के बाजू में एक ऐसा बहुत बड़ा स्लोप था ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ के भी उस तरफ से निकल सकते हैं, तो पर चढ़ने के समय आपको पूरा जो हैदराबाद है दिखाई पड़ता है, और ऊपर जाने के बाद तो इतना ब्यूटीफुल व्यू था, इतना ब्यूटीफुल व्यू, तो सब भी जाते थे, हम सभी जो लड़कियां थी, स्कूल के बाद थोड़ा टाइम होता था ना जब तक हमारा कोई आए नहीं पिकअप ना करे, तो हम चढ़ के जाते थे। तो जब चढ़ने के समय जो मजा करते थे कि बीच बीच में खड़े हो जाते थे और फिर देखो तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ऐसे करके एक दूसरों को दिखाते थे और फिर बहुत खुशी में चढ़ते थे। पर हमारे ग्रुप में ही एक दो ऐसे भी थे लड़कियां जो कहते और कितना चढ़ना और कितना चढ़ना करके चढ़ते थे, और चढ़ने की क्या जरूरत है, फिर भी ऐसे कंप्लेन करते करते ऊपर पहुंच जाते थे। टाइम तो थोड़ा लगता है, और ऊपर पहुंचने के बाद हम पूरा सिटी को देख रहे हैं, उसी में हम हैं, पर ये लड़कियां कहती थी देखो कितना उतरना है, अभी देखो इतना चढ़ लिए, अब देखो कितना उतरना है। अब जो चढ़ के वहां पहुंच गए उसकी खुशी नहीं है, तो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद मेंटेन करना पड़ता है अपनी स्थिति को, अपनी समझ को, अपनी विवेक को बहुत कायम रखना पड़ता है। तो सक्सेसफुल बनना ये कोई लक्ष्य नहीं होने चाहिए, वहां पहुंचने के लिए और वहां रहने के लिए मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है वो चाहिए ना, कैपेबिलिटी है। अभी कोई है जैसा कोई क्लर्क है, कोई कहा तो जॉब करते होंगे, उनको जाके कहेंगे चलो आपको हम ये चेयरमैन का रोल दे देंगे आपको, चलो ले लो, वो कहेंगे नहीं मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, पूरे संस्था संभालने का मेरे से नहीं होता, पहले मैं ट्रेनिंग तो लूं, चलो पढ़ाई करूं, किसी के साथ रहकर देखूं कैसा होता है, ऐसे ही बाप कुर्सी में बिठा देंगे तो मेरे से नहीं होता। तो अपने अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाना, कैपेसिटी कहां तक है। देखिए लक्ष्य आपका इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो इंजीनियर बनना है तो आप कौन से कॉलेज में जाएंगे, अब बताइए, इंजीनियर कॉलेज जाएंगे ना, या मेडिसिन का कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियर जो लक्ष्य है फिर वो उस अनुसार ही वही कॉलेज में जाएंगे। तो आपका लक्ष्य क्या है कि आपको सफलता पाना है, आपको पैसे कमाना है, आपको नाम कमाना है, जो भी है कंफर्टेबल रहना, जो भी ये सब क्यों करते हैं, कंक्लूजन है, बॉटम लाइन है कि आई वांट टू बी हैप्पी, है कि नहीं, खुशी चाहिए ना, और क्या चाहिए, खुशी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, यही तो लक्ष्य रहता। अब कंफर्ट में भी खुशी तो है, ठीक है, तो लक्ष्य तो खुशी का है, और मार्ग कईयों का ऐसा होता, इतना दुखदायी होता है दुखदाई, रो रो के और पहुंचने की कोशिश करते, तो वहां पहुंचने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है आप खुश रहेंगे, क्योंकि रास्ता ही दुख का पकड़ लिए। इतना तनाव ले रहे, इतना मुश्किलात, इतना सोच विचार, इतना टेंशन, और फिर वहां पहुंचने के बाद फिर इतने थक जाएंगे तो बोलेंगे क्या ये हमने कमाया, क्या हुआ। तो मैं ये नहीं कह रही हूं वहां तक नहीं पहुंचना, मैं ये कह रही हूं तैयारी करो ना, अंदर की ऐसी अच्छी तैयारी करो। मेरे हैदराबाद में एक लड़का है, उनको हम जब से वो 10th class में थे ना, तब से मैं उनको जानती हूँ, उनके परिवार, पूरे परिवार को जानती हूँ। तो पहले वो जैसे वहां बहुत होता है आंध्र और तेलंगाना में, ये 11th and 12th की पढ़ाई बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो वहां इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ऐसे बने हुए हैं जिसमें आपको बहुत मना जैसे टाइम देना पड़ता है, सुबह जाओ लाइक 8 o'clock 9 o'clock जाओ और शाम को 7 बजे तक पढ़ते रहो वहां। मना कहां भी ऐसा नहीं सुने होंगे, पर वहां ऐसा होता है 7 बजे तक वही पढ़ते रहते बच्चे 11th and 12th, तो वो घर भी नहीं देखते होंगे, ऐसे पढ़ते कि वो IIT में जाए, मेडिसिन में जाए, ऐसा लक्ष्य जरूर रखते हैं। तो ये लड़का वो IIT कैंडिडेट था, माना IIT में जाने के लिए उसकी तैयारी हो रही थी, तो पढ़ता अच्छा था, पर जब भी मिलता था ना 11th class से, मैं 10th class से मिल रही हूँ, कहता था देखो मुझे वही इंस्टीट्यूट में मिलना है, वो नहीं मिलेगा तो फिर मैं पढ़ूंगा नहीं, ये वो। मैं कहती थी तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे, तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो मिल जाता था 100%, लड़का अच्छा है तो मिल जाता था उनको, वो इंस्टीट्यूट में मिल गया तो मैं कहता अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ ना, तुमको मिल गया अभी। अब देखो कॉलेज बहुत टेंशन दे रहे हैं, तो बहुत माना देखो आपको IIT में पढ़ना है तो जरूर वो लोग बहुत कुछ कराएंगे आपसे, तो वो मेरे से नहीं होता, मेरे को कोई फ्री टाइम नहीं है, मैं कोई एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूम नहीं सकता हूँ। मैंने कहा देखो जो चॉइस किया है उसको अच्छी तरह प्यार से तो करो, तुम्हारा चॉइस है ना, फिर छोड़ दो, नॉर्मल कोर्स करो। नहीं नहीं मुझे यही करना है, पर रोते रोते पढ़ा, वो कैसे भी करके उसको IIT में मिल गया, IIT में मिला। तो मैं फोन करके उन्हें कहा अरे देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमको तो IIT में मिला। तो कहने लगा दीदी क्या बड़ी बात है। मैंने कहा IIT में मिला, तुम इसके लिए तो इतनी तैयारी कर रहे थे ना। तो कहने लगे दीदी क्या फायदा, मुझे चेन्नई में नहीं मिला। मैंने कहा भी मिला तो तेरे को क्या है। तो नहीं नहीं क्या है ना, मेरे दोस्त सभी चेन्नई जा रहे। मैंने जाने तो तुमको तो IIT मिला ना। नहीं कुछ नहीं है उसके बारे में, जो मैं अनलक्की हूँ, मेरे में लक नहीं है, ये नहीं है, बस 1 घंटा उनका चालू। मैंने कहा इसकी खुशी क्यों नहीं होती है। हो गया IIT में गए, अब 4 साल पढ़ना है ना, तो 4 साल के लिए गया। जाने के बाद फिर वहां से फोन आते थे उनके मदर के पास, बोले मम्मी मैं यहाँ देखो कैसा खाना बिल्कुल बेकार है, आपको मैं बहुत याद करता हूँ, आप यहाँ होते तो मेरे लिए खाना बना के देते। तो माँ कभी होता है ना रे बेचारा उसको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है ना। मैंने कहा वहां खाने के लिए गए कि पढ़ने के लिए गए, आप क्यों माँ को तंग करते, आप वहां पढ़ाई करो। कहता है यहाँ प्रोफेसर है ना दीदी, को कुछ भी नहीं आता है। मतलब कोई IIT का प्रोफेसर को कुछ नहीं आता, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, वह क्यों पढ़ा रहे वहां। मैंने कहा जो भी पढ़ा रहे तुम पढ़ो। 4 साल ऐसे ही रोते हुए पढ़ा, जब भी फोन करे कभी एक खुशी की बात, एक गुड न्यूज कभी नहीं दे, ऐसा क्या है, ऐसा ठीक नहीं है ये वो। 4 साल हो गया, फिर वहां इंटरव्यूज होते ना, कैंपस इंटरव्यूज होते है ना, तो मैंने कहा अच्छे जॉब उनको मिल जाएगा। तो फिर फोन किया, कहने लगा आप जरूर मेरे लिए प्रे करो। मैंने कहा क्या प्रे करना है, खुद कर लो ना प्रे। नहीं नहीं आप प्रे करो मेरे लिए कि मुझे ये कंपनी में मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर मैं कुछ भी नौकरी नहीं करूंगा, 1 साल तक मैं बस घर में ऐसे बैठूंगा और फिर एंजॉय करूंगा लाइफ। तो उनके फादर और मदर तो जो मन्नत मांगने लगे, यहाँ वहां कहाँ कहाँ, इसको जॉब मिल जाए, घर पे नहीं बैठे, बहुत मेहनत करे दोनों, उनको मिल गया। होशियार लड़का है, अच्छा है, उसको मिल गया, जो कंपनी में उसको मिलनी चाहिए मिल गया, अभी खुशी मनाना ना नहीं। वो गए वहां बॉम्बे में मिला, मेन जो ऑफिस होता है वो तो मुंबई में रहता है, तो वहां मिल गया। मिलने के बाद ये मुंबई कोई सिटी है पापा, फोन करके कहता ट्रेन पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ट्रेन भी खराब, ये जो भी मैं कमा रहा हूँ पूरा ये कमरे के लिए यहाँ रहने के लिए खत्म हो रहा, ये वो पापा मेरे को हैदराबाद आना है, मैं हैदराबाद आना है। मैंने कहा तुम्हारा करियर बनाना है कि हैदराबाद में क्या है, तुम वहां करो ना, नहीं यहीं वापस आना है, तो हैदराबाद में कैसे भी करके उसको मिला। मिलने के बाद मैंने कहा अच्छा है अब यहाँ सेटल हो जाओ, मम पापा के साथ रहो, घर का खाना खाओ जो भी है और आराम से रहो। नहीं आराम से कहाँ रहेंगे, फिर थोड़े महीनों के बाद बोले आपसे मिलना है मुझे, आओ। तो आए, देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या है? जीवन माना क्या, ये प्रश्न किया मैंने। जीवन माना क्या, माना ये क्या जीवन है, सुबह उठना ऑफिस जाना घर आना, उठना ऑफिस जाना आना, यही लाइफ है। मैंने कहा सभी तो वही करते हैं, उसमें आपको कुछ तो अच्छा लगता होगा, कुछ तो काम कर रहे हो, सुबह उठ के कहाँ जा रहे हो, कईयों को जॉब भी नहीं होता। नहीं मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ को देखना चाहता हूँ। मेरे को नहीं जॉब करना है, मुझे नहीं करना है। मैंने कहा क्या करना है फिर, बोले मेरे को पढ़ना है, अभी मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो फिर 1-6-7 महीने फिर पढ़ाई की, एमबीए पढ़ना है, चलो ठीक है कर लो एमबीए के लिए। फिर अमेरिका में सीट मिला, गया, अच्छा हो गया। वहां जाने के बाद फिर फोन, इतना ठंडी है यहाँ, ऐसी जगह पे क्यों मैंने एमबीए पढ़ने के लिए मैंने सोचा, ये बहुत ठंडी है, मेरा तबीयत खराब हो रही है, दी वो ठीक है। फिर 2 साल वहां हो गया, फिर जॉब नहीं मिलेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, जॉब मिल गया। हाँ वो मदर फादर से जो हैरान है, उसको जॉब मिल गया, मिलते ही घर ले लिया, बोले मम्मी अब आओ, अभी आओ आप, अभी चलो मेरे अब इतने साल से मैं बाहर हूँ, तुम आ जाओ। वो मम्मी कहने लगी मैं नहीं आ सकती, उनको पता है हर चीज के लिए ये पूरा दिन कंप्लेन करता रहता। तो बोले मेरा घुटनों का दर्द है, मेरे को आर्थराइटिस है, मैं नहीं आ सकता, तुम्हारी शादी करा देंगे। तो ठीक है, अभी शादी के लिए भी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, उनको 64 फोटो दिखाए, एक रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, और एक कोई अपना आंध्रा की कोई लड़की उनको करके गए, अच्छा हो गया पर सेटल। मुझे एक लंबा ईमेल भेजा 3 महीने में, बोला लड़की को मेरे को वापस भेजना है। मेरे को पार्सल है, एक पार्सल है जो तुम वापस भेज सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या कारण है, तुम कोई अच्छा कारण तो बताओ, क्या प्रॉब्लम है कि आप दोनों लड़ रहे हो, क्या हो रहा है? तो कहता है कि इनके साथ तो एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकता हूँ। इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशन क्या होता है, तुम्हारे वाइफ के साथ क्या करना? तो कहने लगा कि मैं से बातचीत में मैं पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात करना शुरू किया, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता भी नहीं है असम का चीफ मिनिस्टर कौन है, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है, दिल्ली का, उसको कुछ भी पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कैसे जी सकता हूँ? आई वॉन्ट इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा इसका तुम ही कुछ भी हो तुम ही करो, एडजस्ट हो जाओ, इंटेलिजेंट हो नॉन इंटेलिजेंट हो तुमको एडजस्ट ही होना है। अभी मैं आपके माँ बाप से मैं बात नहीं करने वाली हूँ करके मैं बिल्कुल फोन रख दी। ईमेल भी उनके माँ बाप को नहीं दिखाई, तो वो बार बार वो व्हाट्सएप करता था, दीदी थोड़ा सोचो दीदी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही। मैंने कहा कोई दिक्कत हो तुम रहो उनके साथ, बेचारी लड़की का क्या हाल होता होगा मुझे पता नहीं। फिर 2 साल आई डोंट नो 1.5 ईयर के बाद आया, क्रिसमस का टाइम आया हैदराबाद आया, तो फिर वो लड़की को भी लेकर आया, सब किया। मैंने कहा बस वो बातें नहीं करे अभी तो बैठे, तो मैंने बस मिस्टेक से मैंने पूछ लिया कैसे हो, नहीं पूछना चाहिए था, उनका पूरा हिस्ट्री मेरे को पता है। फिर भी मैंने कहा राजेश हाउ इज एवरीथिंग, हाउ आर यू? तो तुरंत कहने लगा दीदी कि अमेरिका कोई कंट्री है दीदी? कंट्री नहीं है, नहीं कंट्री कुछ भी नहीं है, हमको ही झाड़ू लगाना, हमको ही खाना बनाना, हमको ही सब कुछ करना, ये कोई जिंदगी है दीदी? मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा देखो राजेश तुम पहले बताओ, डेट फिक्स करो। मैंने कहा क्या डेट फिक्स करना है? कौन से दिन पे तुम खुश होएंगे वो दिन बताओ, कब तक पोस्टपोन करना है। खुशी तो पोस्टपोन करते 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 अब तक पहुंच गए। अब तुम्हारा 26 इयर्स हो गया, अभी तक तुमको खुशी नहीं मिली है, एक दिन तो बताओ। बोलो कि मैं 30 इयर्स में मैं खुशी आ जाएंगी मेरे अंदर, तब मैं पूछूंगी आपको आप कैसे हो। क्योंकि ये कंप्लेंट्स का तो एक सागा कहते हैं ना, जैसा ये चलता जा रहा चलता, हर चीज में जो पहुंचता है उसकी कुछ भी अंदर जैसे तृप्त होते ना, कंटेंटमेंट नहीं है। जब बचपन में एक गीत हम सुनते थे, इंग्लिश का गीत था, उसमें सुंदर मीनिंग था, तो वो गीत में कहते हैं, कहानी सुनाते हैं उसमें कहानी। वो कहते हैं कि एक आदमी है, एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे और वो फैक्ट्री के ओनर के बारे में वो गीत गा रहा है। वो ऐसे गीत था, तो कहते कि रिचर्ड कोरी, उनका नाम है रिचर्ड कोरी, कहते रिचर्ड कोरी हैज एवरीथिंग इन हिज लाइफ, उनके पास सब कुछ है, नाम शोहरत सब कुछ है, एवरीथिंग हैज ग्रेस यू नो नेम मनी एवरीथिंग फेम एवरीथिंग। तो सभी उनको बुलाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको मना उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनते सब करते, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फैक्ट्री में उनकी फैक्ट्री में जॉब करता हूं और मैं बहुत गरीब हूं, पर मैं आश रखता हूं कि मैं रिचर्ड कोरी बन जाऊं, उनके जैसा मैं बन जाऊं, मैं क्यों नहीं उनके जैसा हूं, करके पूरा गीत वही है, मैं उनके जैसा क्यों नहीं, उनके जैसा क्यों नहीं। ऐसे गाते 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 फिर लास्ट में कहते कि मैं बहुत सरप्राइज हो गया, वॉज वेरी शॉक्ड, कहते मैं बहुत शॉक हो गया कि न्यूज़पेपर में पढ़ा सुबह को, उस गीत में होता है कि वो घर गए, रिचर्ड कोरी वेंट होम लास्ट नाइट एंड पुट अ बुलेट थ्रू हिज हेड, कल रात को घर गए और अपने आप को मार दिया। तो अभी मैं सोच में पड़ गया हूं कि मैं रिचर्ड कोरी बनूं कि नहीं बनूं, बनना है कि नहीं बनना है। सक्सेस इज वॉट सक्सेस फील्स लाइक, सक्सेस और सफलता जो है ना, उसकी महसूसता नहीं हो तो ये क्या सक्सेस है। दुनिया कह रही है बहुत बहुत वंडरफुल वंडरफुल, पर अंदर से फीलिंग तो आनी चाहिए ना, कि दैट काइंड ऑफ कंटेंटमेंट होनी चाहिए ना कि मैं सक्सेसफुल हूं। सक्सेस इज अ फीलिंग। मैं ये नहीं कह रही हूं कुछ भी आपको हासिल नहीं करना, पर बैठे रहना और कहना चलो मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूं, नहीं करना तो है, पर जो कुछ भी हासिल करो, कुछ भी करो, उसमें वो कंटेंटमेंट का अनुभव, वो संतुष्टता का अनुभव होता है। तो क्या होता है, जो कुछ भी करेंगे, वो छोटा सा कार्य होगा उसमें भी सफलता हो सकती है। अब देखिए ये टेबल है, किसने तो ये टेबल को सेट किया होगा, वो फूल का जो है और फिर ये पानी का, वो सब कुछ नीटली रखे होंगे, कोई किसी का सेवा होगा उन्होंने किया होगा, पर किस प्रकार से किया उस पर सफलता का जो अनुभव है निर्भर है। इस छोटे से कार्य से भी सफलता का महसूस कर सकते हो। आपने कार्य के हिसाब से कर लिए, चलो ये भी करना है वो भी करना है ये भी करना है, चलो टाइम पर कर लो, लोग आएंगे ये करेंगे वो करेंगे, सब काम हो गया, काम नहीं, पर आपने सोचा कितना मेरा भाग्य है कि मुझे ये सेवा मिली, जो इतने सारे लोग आ रहे हैं वो यहाँ बैठ के सुनने वाले हैं और ऐसे स्टेज को हम सजाने, हमको सजाने की हमको ये मौका मिला, कितना हम खुश नसीब है, कितना अच्छा हमको कार्य मिला, ऐसे समझ के किए होंगे, वो फीलिंग से किए होंगे, ही वुड हैव एक्सपीरियंस सक्सेस एट दैट मोमेंट इटसेल्फ। कि उनकी अंदर से एनर्जी बढ़ती है, जब एनर्जी बढ़ती है माना यू आर सक्सेसफुल। आपकी एनर्जी बार बार नीचे गिर रही है माना सक्सेसफुल नहीं हो, रियल यू आर नॉट सक्सेसफुल। क्या करते, छोटे छोटे बातों में इतना ही कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमको करना होगा एंड वी एक्सपीरियंस सो मच रिजल्ट। हम कहां तो भी जा रहे थे फ्लाइट में, तो हमारे बाजू में एक सिख व्यक्ति बैठा था, तो वो बहुत लंबे थे ना, और उनको मिडिल सीट मिल गया फ्लाइट में, और मिडिल सीट बड़ा मुश्किल होता बैठना, और हम ऐसा उस तरफ बैठे थे आइल की तरफ, तो हमने कहा भाई साहब आपको यहाँ बैठना है क्योंकि इतने लंबे हैं ना, तो भाई ने कहा नहीं नहीं आई एम फाइन। वो मुझे लगा कि पूरे फ्लाइट में इनके जैसा बिजी आदमी कोई है नहीं, इनके तीन तीन फोन से अलग अलग ट्यून बज रहे एक के बाद एक, और फोन उठा था, हाँ हाँ हम बैठ गए अभी चल रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे, बस एक घंटे में पहुंच जाएंगे, बस सेम थिंग ही टेलिंग इन ऑल द फोन्स। अभी वो एयर होस्टेस आके कहने लगी प्लीज सर पुट ऑफ द फोन क्योंकि हम फ्लाइट अभी यू नो इट्स गोइंग टू टेक ऑफ। ठीक है, पूरे फ्लाइट में रेस्टलेस थे, बिल्कुल बैठ नहीं सकते थे, ऐसे ऐसा करते थे, बीच में खड़े हो गए, थोड़ा बाहर आयल में खड़े हो गए, उनको तकलीफ होती होंगे। जब फ्लाइट लैंड हुआ इनसे ज्यादा कोई खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको बाहर निकलना है अभी एक सेकंड में, जल्दी जल्दी निकलना है, और उनके फोन बजने लगे फिर से, और एक एक फोन लेके कह रहे हाँ हाँ अभी अभी पहुंच गए, अभी बाहर निकल रहे, अभी देखो अभी बाहर आ जा, ऐसे करके कह रहे। तो फिर एक प्रकार का कन्फ्यूजन हो गया था कि सामने का गेट भी है पीछे का गेट कौन सा खुले, हम तो बीच में है तो किस तरफ से जाए। तो ये भाई फोन पर थे ना, फोन पर बात करते करते ने कहा कि मुझे बाहर निकलना है, इंग्लिश में कह रहा है कि मेरे को बाहर निकलना है, जल्दी जल्दी आना है, कि ये जो मैडम है ना मेरे सामने मुझे जाने नहीं दे रही है, वो मैडम मैं हूं, अब मेरे लगेज अंदर अटक गया, वो बाहर नहीं आ रहा है। तो इतनी जल्दी उनको थी, पता नहीं कुछ कार्य होगा। मैंने कहा ये निकल रहा नहीं तो क्या करे, तो वो पीछे जाने की कोशिश किया, तो मैं बाहर निकल गई। तो बाहर निकलते निकलते जो एयर होस्टेस है ना, इंडियन एयरलाइंस के जो एयर होस्टेस होते हैं ना, वो ऐसे करे करके खड़े रहते, वो जेस्चर जो होता है ऐसा, परंतु उनका चेहरे का जो हाव भाव अलग रहता, भले ऐसे खड़े रहते पर चेहरे से पता पड़ता कि वो कह रहे थे तुम जल्दी घर जाओ मेरे को भी जाना है, तो ऐसे करके गए। तो मैं तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, मैं बाहर निकल रही थी, तो वो एयर होस्टेस मेरे तरफ देख के कहने लगी ओम शांति। मैंने कहा अच्छा, तो मैं बाजू खड़े हो गए, मैंने कहा आपको ब्रह्मा कुमारी पता है क्या, तो कहने लगी नहीं, मैं किसी को पूछी कि ये आप कौन हो, ये आप वाइट जो पहने हो आप कौन हो, तो किसी ने कहा ये ब्रह्मा कुमारी है, ओम शांति करते रहते, किसी ने उनको कहा ऐसे। मैंने कहा अच्छा है, मैंने कहा ओम शांति का मतलब पता है, तो उन्होंने कहा अब नहीं पता है, तो मैंने कहा ओम शांति मीन्स ओम मना आई एम अ सोल, ओम मना आई एम अ सोल, शांति मीन्स पीस, नहीं ओम शांति मीन्स आई एम पीस, आप कहेंगे ओम शांति यू आर पीस, तो नो ट्रबल प्लीज, दोनों शांत है तो कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसे करके मैं बाहर निकल रही थी, तो वो सीख जो भाई था ना वहां से फिर वो इस तरफ आ गया जल्दी जल्दी बाहर, तो ये जो एयर होस्टेस है ना उनकी तरफ देख के कहने लगे सत श्री अकाल। वो रुक गया, बोला सत श्री अकाल हो मैडम करके जो बात करने लगा पंजाबी में, वो एयर होस्टेस कहने लगी मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं केरला से हूँ, अभी कुछ भी हो यू मेड माय डे, बोला शी कुड स्टॉप द मोस्ट बिजिएस्ट मैन ऑन दैट फ्लाइट, जो किसी के लिए टाइम ही नहीं उनके लिए, उनको रोक दिया और इतने खुश हो गए, बोला मेरा दिन बन गया आज, सत श्री अकाल बोले बहुत अच्छा, मेरा कार्य अच्छा ही होने वाला है, ऐसे करके फ्लाइट से निकला। अब देखिए वो एयर होस्टेस ऐसे खड़े रहेंगी ना, उनको पैसे मिल जाते हैं, उनके नौकरी का जो भी है ना तनख्वाह मिल जाता है, ऐसे खड़े रहने कोई कुछ नहीं बोलने वाला, पर उन्होंने वेरी मंडेन टास्क में थोड़ा रंग भर दिए, थोड़ा स्पाइस डाल दिए, थोड़ा खुशबू डाल दिए, है तो बहुत सिंपल कार्य जो रोज करती है, तो ये जो उन्होंने ऐड किया है ना उसका सिग्नेचर बन गया, वो कोई नहीं करता वो ही करेगी, इसको कहते सफलता। आज तक, ये हुआ 8 साल पहले, 8 साल से उनके बारे में मैं सुना रही हूँ कितनी सारी जगह पे, पता नहीं उनका नाम क्या है, मेरे को नहीं पता, पर मैं सुनाती जरूर हूँ। मना ये सफलता नहीं है तो क्या है? When you add color, spice and fragrance in a very simple, mundane task, difficult है क्या? अपने गुणों की खुशबू आए जो भी कार्य करे, को लगे वो करे होंगे। कई घर में ऐसे, कई घरों में कहते हैं जी ये खाना जो भी है ना मैं खाता हूँ, मुझको पता है मेरे माँ ने बनाया, देखते मुझे पता पड़ जाता है मेरे माँ ने बनाया। मैंने कहा वही है ना, वही मसाला है, सब कुछ वही है, तो कोई और बना सकते हैं? नहीं, मेरे माँ का जो टेस्ट है ना वो उसमें अंदर है। तो एक हमारे पास एक फ्यूचर ऑफ पावर करके एक प्रोग्राम रखे थे, ये हर सिटी में जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं ना उनके अंदर वैल्यूज हो, उनके अंदर मना कुछ रियलाइजेशन हो, तो उनके कंपनी सभी लाभ लेंगे, इसलिए ऐसे लोगों को टारगेट किया हुआ था। और हर प्रोग्राम में एक 15-20 जन से ज्यादा नहीं होते थे, और एकदम सेक्युलर जगह पे लेकर जाके उनको प्रोग्राम कराते थे। तो क्या हुआ, वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स, उसमें बहुत सारे जो मुंबई में सब टॉप के सीईओस थे, जैसे ये शॉपर्स टॉप के जो हैं, और फिर जो वो कुक है ना संजय कपूर या कौन जो शेफ जो बनाता है सब वो, और ऐसे वाले बहुत सारे थे, एक 22 लोग थे वहां। तो हम ऑब्जर्वर्स थे, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे भाई लोग आए थे वो प्रोग्राम करा रहे थे, हम पीछे से बैठ के देख रहे थे। तो उन वो प्रोग्राम में ज्यादा भाषण नहीं है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा बोलेंगे, फिर उनको अपने आप विचार करना है, लिखना है, डिस्कस करना है, बस यही है। तो एक प्रश्न उन्होंने किया, इट इज अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, सी ही गिव वन थॉट, एंड द थॉट वॉज दैट आप सोचो कि आपके लाइफ में आप इतने सक्सेसफुल, इतने सबको प्रेरणा देने वाले जीवन आपका बन गया, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आप ऐसे व्यक्ति बने, इसके लिए किसको आप आप नाम देंगे जो आपको प्रेरणा दे, आपको ऐसे बनाए, किसकी प्रेरणा से आप ऐसे बने, कौन व्यक्ति था? तो हम वहां बैठ के सोच रहे थे कि ये सब कहेंगे वो विवेकानंद या गांधी जी या कोई ऐसे होते ना, कौन है वो, कौन है माइकल, वो माइक्रोसॉफ्ट के जो है, ये सभी को याद करते होंगे, ऐसे मैंने सोचा, बाकी भी वैसे सोचते होंगे। सभी ने 22 लोग ने सब अपना लिखे, 20 मिनट दिए उनको सोचने के लिए, सब सोचते बैठ गए, सोचते बैठ गए, इतना सोचे कभी नहीं होंगे, माना अपने बारे में। तो 20 मिनट में जो सभी लिखे, तो उन्होंने कहा आप सभी सुनाओ कौन कौन है जो आपको प्रेरणा दिए, आपको ऐसा सक्सेसफुल बनाए, इसे बिजनेसमैन बनाए, कौन है? उसमें से 95% लोग ने कहा मदर, ग्रैंड मदर, बड़ी दीदी, और कुछ नहीं है। माँ ने क्या इंस्पिरेशन दिया, बाप ने क्या इंस्पिरेशन दिया, ग्रैंडफादर ने क्या इंस्पिरेशन दिया बिजनेसमैन बनने के लिए, उन्होंने कोई सिखाए नहीं होंगे आप ऐसा बिजनेस करो, कई तो बिजनेस फैमिली से भी नहीं है, तो ऐसा कैसे सीख लिया? वैल्यूज, किस प्रकार के मूल्य हमको अपनाना है, जो जहां भी पहुंचो वह कायम रहो, कायम रह सकते हो, और जो भी करो उसमें रंग भरते रहेंगे। तो क्या सिखाए होंगे तुमने? तो फिर वो भाई ने कहा आप ग्रुप्स में जाओ, डिस्कस करो, आपके माँ ने, आपके ग्रैंड मदर ने क्या सिखाया जो आप ऐसे बने। वो डिस्कशन से भी क्या निकला, अब ये भी आप सोच के हैरान होंगे, वो सभी सुनाए तो सही और रो रहे भी, आंखों में आंसू आ रहे, किसी की माँ नहीं है फिर भी उनको याद कर रहे, उनके बाप नहीं है उनको याद कर रहे। तो वो फिर कहने लगे, कि उन्होंने कुछ भी मुख से नहीं बोला, करके दिखाया। वंडर है, अपने गुणों से करके दिखाया। ये होता है फाउंडेशन, जो हम समझते देखते कर, माना हर चीज हम जो कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने दिखाया वो एक्सरसाइज, उसकी कंटिन्यूएशन ही समझो ये सेशन, कि हमको देख के कितने बन रहे हैं, कि हम जो कार्य करेंगे, जैसे हमने कहा रंग भरेंगे, उसमें थोड़ा मसाला डालेंगे, उसमें जो खुशबू डालेंगे, लोग अच्छा लग रहा है, ऐसा कार्य करना चाहिए। एक डायग्नोस्टिक सेंटर है हैदराबाद में, वहां हम गए थे, तो कुछ भी किसी के लिए मुझे वहां से एक्सरे सब पिकअप करना था। हम बैठ के देख रहे थे कि एक ओल्ड कपल थे, रिसेप्शनिस्ट के पास खड़े होके बहुत बात कर रहे। मैंने सोचा इनका कब हो जाएगा तो हम जाके अपना ले ले, तो वो बातें कर रहे और रिसेप्शनिस्ट थोड़ा मना, जैसे परेशान नहीं होते ऐसे ऐसे करके कर रहे थे, परेशान हो रही थी अब कहां तक ये लोग बात करेंगे। मैं भी जाके वहां खड़ी हो गई देखने के लिए क्या बात हो रही। तो वो लोग पूछ रहे, आपके पहले एक रिसेप्शनिस्ट होया करते थे रवि करके, और रवि कहां गया? तो लोग कहने लगे रवि तो छुट्टी पे है, मंडे आएंगे, अभी नहीं है सर। अब उनके साथ आपका क्या काम है? आपको तो मिल गया ना, आपका एक्सप्रेस रिपोर्ट सब मिल गया ना, अभी रवि से क्या आपका मतलब है? कहने लगे नहीं नहीं, रवि से हमको बहुत मतलब है, क्योंकि रवि जब भी एनवेलप देते हैं ना, वो जो भी एनवेलप ब्राउन एनवेलप उसमें एक्सप्रेस सब, उस पर जरूर एक फ्लावर बनाते, वो खुद फ्लावर बनाते और फ्लावर बना के नीचे लिखते हैव हैप्पी हेल्थ, और उनको एक पैसा नहीं मिलने वाला लिखने से। वो हम मिस कर रहे क्योंकि वो चीज देखे तो खुशी होती है, वो नहीं है। हमारा सिग्नेचर है हमारे कर्म, और वो कर्म में जो रंग डालते वो हमारा गुण है, जो रंग डालते वो हमारी खुशबू है। जैसे कर रहे तो करते जा रहे थे, मुंबई में क्यू में खड़े थे, हम सब खड़े थे, मैं भी खड़ी थी, हमको पुणे जाना था, तो स्टेशन में इतने सारे क्यूज थे। मुंबई तो आपको पता है कितना लंबा लंबा क्यूज होते हैं, और उसमें हर क्यू में सभी कंप्लेन कर रहे, चिल्ला रहे, कितना टाइम ले रहे, ये वो करके, कुछ तो कुछ बोलने वाले एक दो तो रहेंगे। हमारा क्यू बड़ा शांत पूर्वक था, मैं देखो ये क्यों इतना शांत है, कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहे, अभी सभी अच्छे, एक दो को तो इरिटेशन आता होगा ना, बहुत टाइम से खड़े हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो जो काउंटर के पीछे जो वो भाई है ना, उसकी एटीट्यूड बहुत अच्छी, मुस्कुराते हुए, कोई तो जैसे इससे सुबह सुबह भी चेहरा ऐसा रहता है, चलो दे लो तो क्या करना है। वो भाई तो जो बात कर रहे, अच्छा कहाँ जा रहे हो, अच्छा मुंह ने शादी है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, एंजॉय करो, ये वो करके सबको गुड विशेस भी दे रहे, मुस्कुरा रहे और टिकट देते जा रहे। तो उनके पास कितना भी जैसे थका हुआ होगा, इतना खड़े होके वो काउंटर के पास जाते खुशी में आ जा रहा, उनको अच्छा लग रहा उनसे बात करना, और पता नहीं इतना इफेक्ट हमारा कितना इफेक्ट होता है दूसरों पर, ये समझना और उसको अच्छी तरह यूज करना, ये सफलता है। एकदम ऑर्डिनरी रीति से चलना, तो चल रहे हैं बस चलते रहेंगे, ये कोई सफलता नहीं है। हर कुछ हम एक एक चीज जो हम करते हैं ना, उसमें बहुत कुछ सफलता पा सकते हो। एक भाई था, वो वाइजैक में एक छोटा सा कंपनी में बहुत बड़ा पोजीशन था उनको, तो उनके बच्चे जो थे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये IIM से हैं उनके फादर, तो कहते थे पापा इतने पढ़े लिखे हैं, इनकी इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एक्सपर्टाइज है एंड एवरीथिंग, हमको लगता है पापा अब्रॉड में भी उनकी इतनी अपॉर्चुनिटीज मिले, हर जगह पे मिले कि वो जा सकते थे, यहां क्यों रहे कि छोटे कंपनी में, मेरे को समझ में नहीं आता है। और दोनों बच्चे कहने लगे मुझे, आप पापा को पूछना कि अभी भी देरी नहीं है, कहां भी जाके फिर उनका शुरुआत कर सकते हैं अच्छी जगह पे, ही इज ओनली 60, जस्ट 60। तो उनका नाम भी रवि है, रवि कुमार है, तो उनसे बात करते करते मैंने कहा, रवि भाई बच्चे बहुत कंप्लेन कर रहे हैं आपके कि आपको मौका मिलता है अब्रॉड, यहाँ वहां आप जाते नहीं है। ये छोटे कंपनी में रह गए, 30 साल से ये कंपनी में रह गए, बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, क्या कारण है कि अब यही कंपनी में रहते हो? उन्होंने कहा बहन जी सिंपल कारण है। मैंने कहा बताओ क्या सिंपल कारण। कहने लगे कि जब वो जॉब में एंटर हुए, बहुत यंग थे तब भी, जब ग्रेजुएट थे, उन्होंने सोचा थोड़ा यहाँ करके फिर डिफरेंट प्लेसेस में अप्लाई करेंगे। ये तो एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड था, उनके जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी का है ना, वो हिसाब से उन्होंने वहां थोड़ा देखने के लिए उनको ज्वाइन होना पड़ा। तो जब ज्वाइन हुए, फर्स्ट डे उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता, आप सबको तो पता ही होगा, ये ओरिएंटेशन में सबको नए नए लोग को बिठाते, वो कंपनी के जो हेड है, जो चेयरमैन है, वो डायरेक्टर्स है, वो सभी बैठ के उनको मिलते, अपना परिचय देते, वो कंपनी का जो मॉरल से वो जो भी मोटो है वो सब बताते। तो इस प्रकार से ऐसा कोई मीटिंग हुआ था। वो जो हेड था ना, जो सीईओ, वो बहुत बिजी था, उनको निकलना ही था, जल्दी जल्दी जाना था उनको, तो अपना अपना परिचय सभी बताओ, अपना अपना नाम, तो सभी खड़े होके 40 जन बैठे थे, एक एक करके खड़े होके कहने लगे मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम, सब बता दिए। तो उन्होंने कहा नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू ऑल एंड आई विल मीट यू कंटिन्यूसली मीट यू थ्रू द ईयर, ऐसे करके कह के वो सीईओ निकल गया, बाकी तो प्रोग्राम चालू था। तो ये होने के बाद क्या हुआ, लगभग 1 महीने या 2 महीने मुझे याद नहीं उतना टाइम के बाद, ये वही काम कर रहे थे, ये जो रवि भाई है वही काम कर रहे थे। तो वो सीईओ वहां से आ रहे थे कॉरिडोर में, तो उनको लगा कि अरे सीईओ आ रहे हैं, तो उनको हम हेलो मना गुड मॉर्निंग करेंगे, तो करके ऐसे हटे, उनको जाने के लिए रास्ता देके वो खड़े रहे कि वो हमको देखेंगे तो हम गुड मॉर्निंग करेंगे। तो वो सीईओ तो वहां से निकल रहा था, निकल सकते थे, वैसे निकल सकते थे, इनके तरफ देख के, ऐसे देख के, एक सेकंड के लिए देख के कहने लगे रवि ना, एकदम से पहचान लिए, अब 40 जन थे उनमें से पहचान ले रवि। तो 3 बारी उन्होंने उनको नजदीक लेके ऐसे पीछे से, जैसा पैक नहीं करते ऐसे, रवि 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 ने ऐसे कर दिया, करके चले गए। तो वो भाई ने कहा बहन जी 3 पैक 30 इयर्स हो गया, बस उस वो बस था बस मेरे लिए, ओनली 3 पैक रवि रवि रवि, इट वॉज लाइक एन एक्नॉलेजमेंट, बस वही चाहिए। और इतना लॉयल आदमी उनके साथ, ये सफलता है ना, और किया मेहनत कुछ भी नहीं, नाम याद रखा। अभी किसी को अब मिलाएंगे और बोलेंगे अरे आपको मिले हैं पर आपका नाम याद नहीं, आपको इतना खराब लगता है ना, अच्छा ही नहीं लगता है, क्यों नाम याद नहीं है, हा? तो आजकल तो सभी उठा हाँ मेरे को याद है आपका नाम, पता है आप ऐसे करके बोल देते बाहर से पर याद नहीं रहता अंदर से। तो द थिंग इज ही रिमेम्बर्ड, पता है सच एन इम्पैक्ट, बता सच एन इम्पैक्ट टू नो टू डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे इज सक्सेस, स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, टू बी अवेलेबल। हम करते जा रहे करते जा रहे, परंतु सही समय पर सही जगह पर सफलता है। हमको कहां रहे हर टाइम, हमारा बुद्धि बिजी है, बिजी है, ये करना वो करना, ऐसा सोचना वैसा सोचना, बस उसमें ही जो करना है सफलता पाना है। अरे सफलता मिल गई पहले तो देख थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा मिली हुई है उसमें तो रिलैक्स हो, तो दिमाग उसमें ही है उस, तो इट्स बिग प्रॉब्लम क्योंकि यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट कैपेबिलिटी टू सस्टेन देम। इतना टेंशन लेके वहां पहुंचेंगे तो टेंशन टेंशन ही होगा वहां पहुंचने के बाद, है कि नहीं। तो इसीलिए आई हैव टू बी अवेलेबल फॉर द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। मुझे हर जगह पे जैसे पहुंचना है तो हाँ आ जाएंगे, एक भाई है फोन करेंगे भाई आप आएंगे यहाँ कब, हाँ आ जाएंगे। अब उनको 1000 काम होंगे तो आप बोल देंगे ना हाँ आ जाएंगे बहन जी, हो जाएगा, तो क्या होता रियली हो जाता है, टाइम मिल जाता है। आज ही कोई सुना रहे थे, आज दोपहर को यहाँ से 11 o'clock को ऐसे कोई सुना रहे थे, हमारे इतने प्रॉब्लम हुए, हमारा टिकट भी कैंसिल हो गया, सब हो गया, फिर भी बन गया, फिर से टिकट बन के फिर हम आ गए। हमारे इतने सारे, वो एक हॉस्पिटल में करते हैं एक भाई, उन्होंने कहा हमारे इतने सारे 100 डॉक्टर्स का प्रोग्राम है और हमको रहना बहुत जरूरी है, पर हमने कहा हमको वहां जाना है, हमारे लिए ये जरूरी है, अभी जाना है माउंट आबू। हमने अपना जो भी थॉट लिया है हमको करना ही है, हमको दृढ़ करना है संकल्प, तो जाके अरेंज कर लिए। सब बोले हाँ नो प्रॉब्लम, वो लोग भी बोले नो प्रॉब्लम, सब अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। बट टू बी एबल टू मैनेज लाइक दैट, मतलब काम छोड़ के भागने की बात नहीं कर रही हूं मैं, राइट टाइम। मैं एक एग्जांपल सुनाती हूँ। एक आदमी, उन्होंने अनुभव सुनाया, एक जैसे डिस्कशन होते हैं ना कोई वर्कशॉप में, उसमें ये भाई बैठा था, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में रहते, उनको पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम हो गया, वहां के जो सेनेटर होते ना, एमपी को वहां सेनेटर कहते हैं ना, तो सेनेटर के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और सेनेटर तो मना जैसा इतना हैरान कर रहे हैं, इनको इतना हैरान कर रहे हैं बिजनेस में, कि वो फैक्ट्री बंद करने के लिए वो तुला हुआ है, इज जस्ट वेरी अगेंस्ट हिम। तो उनको मना जैसे वैल्यूज और यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू शुड डू द राइट थिंग, ऐसा उनको है, और पहले से भी उनके बुक्स भी ऐसे लिखे हुए हैं उन्होंने, वैल्यूज इन बिजनेस ऐसे करके लिखते हो आदमी। तो ये पॉलिटिकली उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा एक कोई सेनेटर है, एमपी है, उनसे आपको साइन लेना होगा, वो आप साइन ले लेंगे तो आपका जो फैक्ट्री है वो बंद होने वाला है ना, वो बंद नहीं होगा, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जाके वॉशिंगटन डीसी में बैठ जाओ। तो वॉशिंगटन डीसी में जाके कितने दिन से वह होटल लेके बैठे, काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, वो सेनेटर मिलता ही नहीं है, वो तो कहां चला जाता है, किस फोन करे तो मिलता है, इतना मुश्किलात में वो थे। तभी यहां ब्रह्मा कुमारी लंदन में अपना सेंटर में वैल्यूज इन बिजनेस के ऊपर एक प्रोग्राम रखे थे, तो इन्होंने बुक लिखा है ना वो विषय पर, तो इनको इन्विटेशन मिला कि आप भी आओ भाई साहब, अपना भी विचार सुनाओ। तो भाई ने कहा ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक, और मैं इसके लिए तो मैं सब कोशिश करता हूँ, अब पर क्या मेरे प्रॉब्लम ऐसे चल रहे हैं कि मुझे सेनेटर से सिग्नेचर चाहिए, वो नहीं हो रहा, अब मुझे लग रहा है बस एक 5-6 दिन में मेरा फैक्ट्री बंद होने वाला है, अब मैं क्या करूं, मैं निकल नहीं सकता हूं। तो वहां का जो बहन थे उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम भाई साहब, नेक्स्ट टाइम आप जरूर आना करके मिले। तो वो भाई बैठे बैठे सोच में पड़ गया, अब मैं कहां भी ढूंढू वो सेनेटर तो नहीं मिल रहा, अभी मुझे क्या करनी चाहिए, मैं जो मानता हूं, मैं जो समझता हूं ये राइट है, अपने व्यापार में ऑनेस्टी चाहिए, अपने व्यापार में हमको वैल्यूज मूल्य को यूज करेंगे तो सफलता, ये विषय पर मैं मानता हूं, वो वैसे वो सेमिनार वहां चल रहा है लंदन में, मुझे जाना चाहिए। अभी जो भी कोशिश किया, एक महीने से किया, कुछ नहीं हुआ, मना ये एक भगवान से एक बुलावा है, जैसे आपको भी भगवान ने बुलाया तो पहुंच गए ना, तो ये बुलावा आया मुझे जाना है, ऐसे करके तैयारी होके बस वही रात निकल गए और लंदन पहुंच गए वो भाई। लंदन पहुंचने के बाद सुबह सुबह को फिर उनका जो सेशन होता है ना, उसमें सभी कहते हैं ना मिलते एक दूसरों को मिलने का, ग्रीट मीट होता है, ग्रीटिंग मीटिंग चल रही थी, तो सब चाय पी रहे सबको, तो जिन्होंने उनको इनवाइट किया वो आके कहने लगे अरे इट इज वंडरफुल यू नो फॉर यू यू नो टू सी यू टू केम ऑल द वे एंड वी आर हैप्पी, बहुत खुश है कि आप आए, पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? बोले नहीं, हमारा प्रॉब्लम तो वैसा ही है, अभी तक वो सेनेटर का सिग्नेचर ही नहीं मिला तो क्या करें, वो पता नहीं कहाँ है, कितने दिन से मैं ढूंढ रहा हूं। बोले क्या करें, आपका मना भगवान आपके साथ है, कुछ तो अच्छे बातें कुछ बोले होंगे वो लोग। वो बात ऐसी चल रही थी, दो जन फिर ऐड हो गए, फिर तीसरा जन भी आ गया, फिर सुन रहे रे ऐसा कैसा हो गया जॉर्ज, यू शुड यू नो बी करेजियस, ऐसा करके सुना रहे थे। तभी एक वहां एक बहन आई हुई थी अमेरिका से, वो भी अमेरिका से थी, आके बोली मैं भी अमेरिका से हूँ एंड ऑल। तो कहने लगी आप क्या बात कर रहे हो, मतलब मेरे को सेनेटर का सिग्नेचर चाहिए, ऐसे तो प्रॉब्लम, कौन सा सिग्नेचर, कौन सा सेनेटर? बोले उनका नाम ये है। तो कहने लगी आर यू श्योर यू वॉन्ट हिज सिग्नेचर? बोले हाँ, वो इनका है. क्यों क्यों आप ऐसे बोले? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ. उनके सेक्रेटरी आप हो? हाँ मैं उनके सेक्रेटरी हूँ. तो दो आपका, मैं फैक्स कर लेता हूँ. वो तो हवाई में है, छुट्टी में एक महीने से, क्योंकि उनकी वो हो गया है, तबीयत खराब हो गया है, तो वहां रहता अभी. चलो आपका दे दो. तो वो तुरंत फैक्स किया, वो सिग्नेचर करके भेज दिया. देखो लंदन जाना था. वेन यू फॉलो योर वैल्यूज, आराम से आपको जो भी है, जैसे भी है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा. पर आप उसको लेके पकड़ेंगे, पकड़ के बैठ जाएंगे कि होना ऐसे, होना ऐसे. और जो समझते हैं कि ऐसा ही करना राइट है, नहीं, आई हैव टू बी अवेलेबल फॉर द राइट थिंग. पुण्य कमाओ ना, पुण्य कमाओ. आपका पैर सही जगह पे जाए बार बार, तो आपका जो भी है वो अपने आप मैनेज हो जाएगा. मैं फिर से कह रही हूं, ऐसा नहीं सब छोड़ के बैठो, नहीं, करना तो है, बैलेंस, सब बैलेंस. तो संकल्प, मैं आज दोपहर को सुना रहे थे ग्रुप को कि संकल्प यहां आपको लेना होगा, क्योंकि ये जगह ऐसे बनी हुई है, जो आप संकल्प करो वो हो जाएगा. आप सोचेंगे ऐसा कैसा होगा? अपने लिए ऐसे संकल्प है, मुझे ऐसा गाड़ी चाहिए, नहीं वो नहीं, ऐसे संकल्प नहीं, परंतु मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसा भगवान के साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप हो, ऐसे करके आपका कोई ऐसा संकल्प आप लेंगे ना, वो हो जाएगा. आप समझो, हो ही पड़ा है, पर आप लो कि मुझे कंसिस्टेंटली, जो कहते तपस्या माना क्या, कोई भी चीज को आप कंसिस्टेंटली करते रहो. जैसे किसी का वॉकिंग करना होगा सुबह को, कई लोग ऐसे होते हैं, बारिश भी पड़े, तूफान भी आ जाए, वो चतरे पकड़ के जाएंगे सुबह को, कुछ भी हो जाए जाएंगे. तो तपस्या है, कुछ भी नहीं रोक सकते, बस ऐसे ऐसे आप यहां दृढ़ संकल्प करो, हो जाएगा. सफल हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा कि हमको ऐसा बनना है. कोई चीज का हमको इफेक्ट नहीं, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं. आज रिसेंटली हमारा राखी हुआ ना, तो राखी में हम जब बांधते हैं सबको, तो हम उनको सुनाते हैं कि भगवान की राखी है, भगवान ही आपकी रक्षा कर सकते, कोई भाई बहन की राखी नहीं है, ऐसे उनको समझाते हैं. तो फिर वो कहते खर्ची देना है, तो हम कहते क्या खर्ची देंगे, हम बताएंगे कि आप ना कि हफ्ते में एक दिन, हम ऐसे सुनाते, हफ्ते में एक दिन ना किसी के बारे में बुरा सोचना, ना बुरा बोलना, इतना करो. तो जिस भाई को मैं राखी बांध रही थी ना, तो वो बोले भाई बहन जी और कुछ बोलो ना, ये तो नहीं हो सकता है, खाना छोड़ने के लिए बोलो. खाना कुछ भी नहीं है, ये छोड़ो ना, इसका उपवास करो ना, इसका थॉट्स का है? तो 98 होगा, मेरे को याद नहीं. तो एक भाई को हम और दूसरे बहन, हम दोनों उनको यहाँ ज्ञान सरोवर, आप कल देखेंगे, जिन्होंने नहीं ऊपर गए नहीं वो देखेंगे, ज्ञान सरोवर हमारा बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है. तो वहां हम इनको लेकर गए थे, ये भाई को, ये कंपनी का एचआर हेड थे वो, तो हम उनको कभी मिले नहीं. तो हमको बताया गया कि आपको एयरपोर्ट में मिलेंगे, तो हम दोनों वहां गए, ढूंढ रहे थे, वो मिले नहीं. फिर फ्लाइट में उनके बाजू में हमारे सीट थे, और उनके तरफ हम देखे, तुमको लगा कि उनको अच्छा ही नहीं लग रहा हमारे साथ वो ट्रैवल करना, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा कि हमारे साथ ट्रैवल करना अच्छा नहीं लग रहा है, कि माउंट आबू जाना अच्छा नहीं लग रहा, हमको नहीं पता पड़ा. पर वो न्यूज पेपर ऐसे पकड़ के बस बिल्कुल हमारे साथ बात ही नहीं कर रहे थे, और हम उनके पास बाजू में बैठे. मैंने कहा पता नहीं है भाई का क्या, उनको सुनाना था उनको कि माउंट आबू में ऐसा होता, ये होता, कॉन्फ्रेंस इस प्रकार के सब उनको बताना हो. तो मैंने कहा आपको पता है ना माउंट आबू में 4 घंटे लगते हैं यहाँ से अहमदाबाद से. हाँ हाँ हमको पता है, हमने पता कर लिया है एंड ऑल दैट. तो फिर कहने लगे कि बहन जी आप बुरा नहीं मानना, पर मेरे को आने का दिल नहीं है. मैंने कहा फिर आप क्यों हाँ भरे, क्यों हाँ बोले, आपको ना बोलना था. नहीं, कंपनी के सीईओ ने स्पॉन्सर किया है कि मुझे जाना है, जाके सीखना है, तो मैं कैसे मना कर सकता, मेरे को जाना ही पड़ रहा है, मेरे को कितना काम है ऑफिस में, बहुत काम है, पर मेरे को निकलना पड़ा. अच्छा ये काम छोड़ के आ रहे इसलिए आपको, नहीं नहीं वो बात नहीं है, पर आप लोग क्या है ना, आप लोग बोलते रहे, आप लोग हमको चेंज करने की कोशिश करेंगे, मुझे पसंद नहीं है. मैंने कहा आपको क्यों चेंज करेंगे भाई साहब, क्यों चेंज करने की कोशिश करेंगे. बोले नहीं आप बोलेंगे ये नहीं करो वो नहीं करो, नहीं हमने बोलने वाले हैं, क्यों आपको कैसा क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं बहन जी आपको मैं सच बताता हूँ, आई एम अ स्मोकर, मैं इतना स्मोक करता हूँ हर दिन में, मेरे को 4-5 पैकेट तो चाहिए, मैं स्मोक इतना करता हूँ। अब मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, 10-15 साल से। अभी आप बोलेंगे हमारे कैंपस में स्मोक नहीं कर सकते क्योंकि ये होली प्लेस। मैंने कहा हाँ वो तो है, अपने कर सकते, ये तो इंसल्टिंग नो, एनवायरमेंट को इंसल्ट करने की बात है, आप भले कहाँ भी कर, पर मेरे को करना ही बहन जी, नहीं करेंगे ना मेरे को पसीना निकलता है, ऐसे छोड़ देंगे तो एकदम से पसीना निकलता है, वो पैल्पिटेशन होता है ना, दिल दर्द दर्द दर होता है और फिर हाथ कांपने लगता है, ये सब होता है मैं नहीं स्मोक करे तो आप कैसे बोलते कि नहीं करे? मैंने कहा देखो भाई साहब आपका तो बहुत भयंकर सिचुएशन है, चलो फ्लाइट लैंड होते ही हमने योगिनी बहन को फोन किया, मैंने दीदी मैं क्या करूं, इनको हाथ कांपते पैल्पिटेशन होता पसीना निकलता है स्मोकिंग छोड़े। दीदी ने कहा ये तो हार्ट अटैक जैसा है, ये स्मोक करने से होता है कि स्मोक छोड़ने से होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये भाई तो कह रहे हैं छोड़ने से होता है। दीदी ने कहा चलो इनका हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, भले वहां से परमिशन ले लो, उनको बाहर भेजो कैंपस के बाहर, और भले वो स्मोक करके आए, हमको क्या है ना, बिकॉज ही विल बी इन ट्रबल। मैंने कहा ठीक है, तो वहां मैंने बोल दिया भाई साहब अब वहां पहुंचने के बाद आपको प्रोग्राम बताएंगे। हम तीनों एक ही गाड़ी में थे ना, वो भाई तो जब 4-5 बारी गाड़ी रोके, इतना टाइम लगा क्योंकि वो करते होंगे स्मोकिंग एंड ऑल। एनीवे तो गए वहां, पहुंचने के बाद हमने कहा, हमने पूछ लिया कि भाई साहब आपको कब कब स्मोक करना है, तो उन्होंने कहा लंच के बाद, डिनर के बाद, ये टाइम वो टाइम, इतना बड़ा लिस्ट था, मैं क्या बोलूं इतना बड़ा। मैंने कहा इतना टाइम आपको करना है? हमको करना ही है। मैंने कहा चलो देखो यहाँ सिक्योरिटी वाला है ना, उनको हम कहेंगे कि आप बाहर जाएंगे, अब ऐसा वॉकिंग करने जा रहे थे हम बता देंगे, ठीक है ना, तो आपको इशारा करते तो आप बाहर चले जाना। बोले ठीक है, जो खुश हो गया मैं क्या बताऊं, एकदम खुश वो टाइम से। फिर हम लंच ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद जाके हम ऐसे करते थे, भाई सब अभी जा सकते करके ऐसे इशारा करते थे, यो खुशी से ऐसे खड़े होके भागते थे। अरे बापरे क्या खुशी है इनको इतना हा? तो ऐसा पूरा दिन एक दिन हो गया। नेक्स्ट डे दो ब्रेकफास्ट के टाइम आ गए, फिर दोपहर के टाइम में जाके मैं ऐसे ऐसे करी भाई साहब तो ऐसे किए। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? बोले बहन जी आप नहीं आओ प्लीज। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले आपको देखे तो मुझे स्मोकिंग याद आ रहा है। मैंने कहा अच्छा हाँ, आप आओ ही नहीं ना प्लीज, आप कौन सा रास्ता दिखा रहे मुझे? मैंने कहा क्या रास्ता? आपने कहा ना हार्ट अटैक आएंगे आपको। मैं हार्ट अटैक कुछ भी नहीं है, मैं तो मजा कर रहा हूँ यहाँ प्लीज, अब मेरे को स्मोक नहीं करना है, मेरे को बाहर नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है, इतने सारे फ्रेंड्स बना लिए सबके साथ बैठ के, सब मतलब वही सब्जेक्ट के लोग सब थे वहाँ, तो दे वर ऑल इंजॉइंग। ठीक है, 4 दिन बिल्कुल मैं उनके मना गए ने बात भी नहीं कर, उनका सेशन चालू थे। फिर जब वापस जाने का टाइम हम साथ में आ रहे थे, एक बार भी नहीं रुके गाड़ी, एक बार भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब वर रियली इट्स ग्रेट। मैंने कहा भाई साहब आपको आप कैसे कर पाए, रियली वंडरफुल, मेडिटेशन तो तभी सीखे हैं पर इतना जल्दी कैसे हुआ? उन्होंने कहा बहन जी पता नहीं, मैंने ऐसे संकल्प किया वहां पहुंचते ही। मैंने कहा क्या? कि ये सभी इतना एंजॉय कर रहे हैं ये हैबिट के बिना, मुझे हैबिट है इसलिए मुझे कंफर्ट नहीं है, करूं करूं करके दिल में ऐसा चलता रहता, ऐसा क्यों मेरा डिस्कम्फर्ट लाइफ रहे? जो भी एनवायरमेंट में मुझे एंजॉय करना है नेचुरली, इसके बिना ये कोई डिपेंडेंट में हो जा रहा हूं कि क्यों मैं डिपेंड हूं? तो मुझे अंदर से ऐसा दृढ़ संकल्प आ गया कि वहां के मेडिटेशन रूम में बैठ के मैंने सोचा मैं अभी कभी नहीं करूंगा। और बहन जी जो हो गया अभी, अब 20 साल हो गए, 98 की बात कर, 20 साल हो गया कभी उन्होंने स्मोक नहीं किया है। इतनी पावर है, पर दृढ़ संकल्प करना इन्हें तो नहीं नहीं मेरे एंजॉयमेंट है मेरे रिलैक्सेशन है, ऐसे करके सोचेंगे तो नहीं होता, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। और स्मृति बार बार स्मृति लेना, मैं कौन, इतने सारे भाई बहन आकर आपको समझा रहे कर रहे कि अपने जीवन के आधार से अपने अनुभव के आधार से आपके सामने ये रख रहे कि कैसे आपको संकल्प को श्रेष्ठ दृढ़ बनाना है, तो आप बार बार वही संकल्प दृढ़ बनाते जाना। अभी जितने दिन आप हो आज और कल, आप ये सोच मुझे बनना है, करना है, ऐसा करना है, ऐसी करके बार बार आप सोचो, हर एक घंटे में सोचो मुझे ऐसा बनना है और मैं ये हूं और मुझे बनना है, ऐसे करके सोचो तो क्या होता, हो जाता। क्योंकि वातावरण बहुत अलग है ना, वहां पहुंचते ही बहुत अलग वातावरण है, फिर भी ये कायम आप रख सकते हो क्योंकि अपने थॉट पावरफुल बना लिए, थॉट पावरफुल बना लो। और ये है कि स्मृति की बातें, स्मृति की ही चमत्कार है, जैसी स्मृति वैसी मन की स्थिति है कि नहीं, और जैसी मन की स्थिति वैसी वृत्ति है, और जैसी वृत्ति है वैसी दृष्टि है, जैसी दृष्टि है वैसी कृति है, और जैसी कृति है वैसी सृष्टि है, और जैसी सृष्टि है फिर से स्मृति है। तो स्टार्ट कहां से होता है, स्मृति का ही कमाल है। को क्या आप याद करेंगे उसके ऊपर ही तो पूरा खेल पूरा चक्र चलने वाला है, तो इसलिए आप वहां से शुरू करेंगे, स्मृति से ही। याद है हम कहां तो जा रहे थे, तो तब मैं गाड़ी चला रही थी, तो पीछे से अब ऐसा हो गया कि सामने एक ऑटो आ गया, एकदम से आया और रुक गया, उनका कोई प्रॉब्लम होगा ऑटो का, तो मैं ऐसे ब्रेक करी तो फिर ऑटो को टच ही नहीं हुआ, और मैं खुश हो गई, अच्छा हुआ बाबा मैं ऑटो को नहीं टच कर, मैं कुछ नहीं हुआ। अब मैं खुशी में आ रही थी, पीछे से एक सेंट्रो कार और एक दूसरा कार दोनों फट ऐसे करके वो स्पीड में आ रहे थे, तो मैंने कहा ये क्या हो गया अभी, चलो ठीक है करके गाड़ी को मैं लेफ्ट लेने वाली थी, जाके देखना है कि पीछे डेंट है कि नहीं। तो पीछे वाला जो भाई था ना, ड्राइवर कौन था उनका मैं देखी, तो उनका तो पूरा ऐसा स्मैश हो गया, सामने से पूरा उनका ऐसा हो गया, तो कैसे भी गाड़ी चल रही थी तो फास्ट ऐसे जाके मेरे सामने रोक दिया, उनको लगा कि मैं चली जा रही हूँ तो मुझे रोक के बात करना होगा। तो मैंने कहा बाहर निकला तो भाई का चेहरा देखना है, इतना गुस्सा ऐसे ऐसे करके हमारे पास आ रहा था। तो हमारे बाजू में जो दूसरी बहन थी, मैंने कहा अर्चना बहन हमको क्या करना चाहिए, वैसे तो मैं देखी हूँ कहा एक्सीडेंट होता है ना, सब बाहर उतर के फिर बात करते हैं ना, तो हमको भी उतरना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो मार देंगे हमको बिल्कुल हमको उतरना नहीं है, लॉक कर देना है। मैं लॉक कर दी, मैंने कहा ये क्या, इतने गुस्से में आ रहा था और जो गाली मैंने लाइफ में कभी नहीं सुनी होगी ऐसे करके सामने आया। आते आते मैंने देखा भी ये क्या करने वाला, हमको देखा ऐसे ऐसे देखा ऐसा करके चला गया, फिर जाके गाड़ी में बैठ के चला गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, बोला लेडी ड्राइवर इनसे क्या बात करेंगे। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं बताऊं क्यों, कई लोग कहते बहन जी जब गुस्सा आता है ना वो ऊपर तक जाता है फिर नीचे आता है, बीच में रोकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रोक सकता है, वहां तक जाना ही है। इनका तो इतना भयंकर गुस्सा और एकदम से स्टॉप हो गया और शांति से जाके बैठ के चले गए, ऐसा कैसा हुआ, क्योंकि ये एक स्मृति की कमाल है, बचपन से उनको सिखाया गया, वो उन्होंने स्मृति लिया होगा कि लेडी के ऊपर हमको गाली नहीं करना, मतलब वी शुड नॉट अब्यूज अ वुमन, और रोड पर अब्यूज करेंगे तो दूसरे आकर भी मारेंगे हमको कुछ भी हो ना, तो हमको करना नहीं है, ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है। इतना प्रैक्टिस 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 उन्होंने पेरेंट्स सिखाया, वो सिखाया, अपने आपको इतना प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वहां आते देखा तो बोले नो प्रॉब्लम। अभी क्या है वो उन ड्राइविंग भी उनको लगता होगा, ड्राइविंग भी नहीं आती होंगी उनको, क्या उनसे बात कर। तो द थिंग इज टू पुट अ फुल स्टॉप इन अ सेकेंड हैपन्स When you have the practice of the स्मृति, है ना। आप देखो आपके बैंक में पैसे नहीं है और आप गए शॉपिंग, सभी नहीं हंसेंगे, आपके पास है ही नहीं, नो क्रेडिट कार्ड नहीं कुछ भी, आप क्या खरीदने गए, क्या पैसे करके गए। ऐसे ही हमारे बैंक में भी ये जमा होना है, क्या है, स्पिरिचुअल बैंक, स्पिरिचुअल बैंक में जमा करना है, स्मृति का बैंक होता है उसमें जमा करना है, कमाई जमा करना है, है? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप, मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मेरे अंदर ये गुण है, मैं भगवान का संतान हूँ, मैं ऐसे स्मृति का इतना प्रैक्टिस 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 और वो बैंक में स्पिरिचुअल बैंक में जमा है, परिस्थिति पीस, कोई प्रैक्टिस नहीं, बैंक एम्प्टी और परिस्थिति आई शांति शांति, कहां से आएंगे, कहां से आएंगे शांति, कुछ भी जमा नहीं है ना, पूरा जीरो है वहां। व्यर्थ संकल्पों का मेला चल रहा है यहाँ, तो कैसे होगा? तो जमा करना स्मृति, प्रिपरेशन चाहिए हमको। वहां ऊपर जब आप पहुंचेंगे, कहां भी सफलता का सीढ़ी आप कहां भी हो, वहां कायम रहना है। और चढ़ने से पहले यहां स्टेबल होना आपका फाउंडेशन, तो स्मृति प्रिपरेशन चाहिए। हर प्रकार की चीज को सामना करने की प्रिपरेशन चाहिए। ये प्रिपरेशन होगा तो यू आर फाइन देयर। तैयारी है ना अपने अंदर, वो तैयारी रहेगी तो हमको जाना वहां है। तो जाना वहां है तो प्रिपेयर यहां होना है ना। तो आप सभी यहां आए ट्रेनिंग के लिए आए, भले आप सुन रहे हो, सुन के उसको धारण करेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, अनुभव करेंगे। तो ये सब जो भी ट्रेनिंग चल रही है आपकी आगे, आप सभी सफल व्यक्ति हो। ऐसा नहीं आप आए हो सफलता कैसे प्राप्त करें, नहीं, आप सफल हो। और कईयों के जीवन भी आपने किसी किसी को मदद बहुत किए भी होंगे और करते भी होंगे। यहां कोई भी नहीं बैठे होंगे जो कहेंगे मैं किसी की मदद नहीं किया, बोलेंगे कोई यहां? कोई नहीं। पर अपने आप को मदद करना अभी स्टार्ट करना है, खुद को मदद करना। परसों कोई आके कहने लगी, बिन जी मेरे फादर तो सबको मदद करते, सबको करते, अपने आप को नहीं। उनका तबियत नहीं देखते ना, कुछ भी नहीं देखते, बाकी लोग की बस सेवा करते रहते, ऐसा भी नहीं। बैलेंस तो हमको अपने आप को बनाना है, बना के आगे चलना है। क्यों? क्योंकि बहुत है हमको देख के बनने वाले, बहुत है प्रेरणा लेने वाले। हम अकेले हैं क्या? हम क्या आइलैंड है? आइलैंड नहीं है ना, सबके साथ कनेक्टेड है। हमको पता नहीं इसको, अब सोचेंगे भी नहीं। एक मुस्कुराहट से कितनों को फिर लाभ मिलता होगा आपसे, कितनों को। एक भाई, एक माता आती है हमारे पास, वो कहने लगे, उनको हस्बैंड को लेकर आई, कहने लगी बहन जी आपको मैं आपको सुनाना है कि ये घर पे आते हैं ना, आते मैं एक प्रश्न करती हूँ उनको, रोज एक प्रश्न करती हूँ, बहुत गुस्से में आ जाते। मैंने कहा वो प्रश्न करते हो क्यों, गुस्सा क्यों दिलाते हो? नहीं बहन जी, आप उनको पूछो मैं कौन सा प्रश्न पूछती हूँ, आप पहले पूछो तो सही। मैंने कहा भाई साहब ये क्या, कौन सा प्रश्न पूछते हैं आपको, आपकी वाइफ तो मुस्कुराने लगी। तो आप तो मुस्कुरा रहे हो, तो ये कह रही आपको गुस्सा आता है? बोले बहन जी मैं घर आते ही ये पूछती है आपका दिन कैसा रहा, मेरे को गुस्सा आता है। अब उसके लिए जवाब क्या देना होगा बताओ, क्या जवाब देना होगा? ठीक था, ओके, ठीक नहीं था, चलेगा, हो गया, जो एक वर्ड में जो आप खत्म कर सकते वो प्रश्न जवाब देके, चार पांच सेंटेंस गुस्से में बोलते क्या फायदा, एनर्जी किसकी गई? क्या पूछते हो कि कैसा दिन है, कैसा तुमको क्या पड़ी है, तुम क्या करते हो, घर में बैठे रहते हो, इतना बोलने की जरूरत है? एक भाई ने कहा मुझे मेडिटेशन करना है, मैंने कहा क्यों करना है, मतलब करो भले, पर कारण क्या, लक्ष्य क्या? बोले मेरा बच्चा है 3 साल का, मेरा जॉब इतना दूर है, घर आते ही इट इज अबाउट ऑलमोस्ट 8:30 हो जाता, और घर पहुंचते में इतनी ताकत ही नहीं रहती, और मेरा 3 साल का बच्चा तो वेटिंग करता है, इंतजार करता है कि पापा आए, पापा कैसा मुझे खेलना है, और मैं ताकत नहीं मेरे अंदर। सफलता है माना ये जो समय है उसको अच्छा सफल करे, कि सही समय पे एनर्जी मिले, सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाए, सही विचार से, सही संकल्प से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाए। डायमंड लाइक लाइफ, वैल्यूबल लाइफ है ना, अपने जीवन से कोई और बन जाए देख के तो ये तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। पर आप देखिए कि ये बनना है, संकल्प तो 1 सेकंड की है, एक थॉट को चेंज करने के लिए कितना टाइम चाहिए बताइए? बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, उसको चेंज करने के लिए कितने थॉट्स चाहिए, नहीं कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए? एक दिन, दो दिन, एक घंटा? एक थॉट को चेंज करने के लिए कितना समय चाहिए? एक सेकंड है ना, सोचो तो एक सेकंड, नहीं सोचेंगे तो फिर जीवन भर। एक भाई आया था, उन्होंने कहा मेरा भाई केयर हॉस्पिटल है ना, वहां एडमिट है, हार्ट का दौरा पड़ा तो उनकी सर्जरी है, तो मैं जाऊं बेंच उनको मिलने। मैंने कहा क्यों पूछ रहे, भाई एडमिट है तुम हमको क्यों पूछ रहे भाई साहब, अब जाके मिलो ना। नहीं नहीं 20 साल से बातचीत नहीं, बात ही नहीं, तो अभी जाके मिलू कि नहीं मिलू। मैंने कहा क्या कारण था कि आप बात करना बंद कर दिए? वही तो बेन जी, मेरे को याद ही नहीं है। बोले याद ही नहीं है तो क्या, मैंने ऐसा समय बीत जाता है और परिवर्तन करना एक सेकंड है। न्यूज़पेपर में बहुत साल पहले 90s की बात कर लूं, एक आर्मी ऑफिसर ने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई पढ़ के, मैंने कहा, उन्होंने कहा पढ़ के देखो अच्छा है, वो रियल है कि आर्मी ऑफिसर वो रिटायर होके कोचीन है ना एर्नाकुलम, वहां जाके सेटल हुए, अपना होम टाउन है। तो वहां जब रहते थे ना, तो क्या हुआ कि उनका गाड़ी का जो सीट है ना, पुराना गाड़ी था, सीट सब पुराने थे, तो इस सीट कवर चेंज करने वाले जो कार डेकोर पर्सन के पास गया और कहने लगा कि देखो मेरा कार सीट चेंज करो। उन्होंने कहा कि आप आर्मी से हो? हाँ हम आर्मी से है। अच्छा देखो आपका स्टीयरिंग व्हील भी हम चेंज कर देंगे। उन्होंने कोई जरूरत नहीं है, नहीं अच्छा आपको ग्रिप आएगा सब, आपका स्टीरियो सिस्टम भी सर इट्स वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड है, उसको भी थोड़ा चेंज कर दे, नहीं जरूरत नहीं है, आपका जो टायर है वो भी बहुत ओल्ड है, इसके उसके भी अच्छे मना बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स आए, उसका भी नहीं कोई जरूरत नहीं, ये सब नहीं करो, सीट कवर चेंज करके दो। ठीक है, तो घर पहुंच गए, तो फिर नेक्स्ट दिन या पता नहीं कब फोन किए और पूछने का काम हो गया। बोला बढ़िया अभी गाड़ी तो इतना सुंदर दिख रहा है आपका गाड़ी, आपका स्टीयरिंग व्हील, आपका टायर्स, आपके स्टीरियो सब चेंज कर दो। बोले ये क्या है, हमने आपको कहा था क्या करने के लिए? हमने कहा सीट कवर चेंज करो, ये सब क्यों किया? अरे अब आकर तो देखो, हमको देखना ही नहीं, आओ ना आओ। तो इतने गुस्से में गया, क्यों किया ये सब काम, बिल दिखाओ पहले कितना हुआ। वो भाई ने कहा कि यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, चलो जाके थोड़ा कॉफी पियेंगे, टी पी, क्यों जा, चलो आइए। तो बोले कौन पे करने वाले? हम ही करेंगे। तो लेकर गए, तो टी पे पीते समय वो कहने लगे सर यू आर सो ग्रेट। बोला मैं ग्रेट क्यों? आप आर्मी में आपने इतने साल अपना जीवन दिए, भारत के लिए आपने इतना दिया, मुझे भी आर्मी में जाने का बहुत दिल था पर मेरा आई साइट था ये, पर बिल दिखाओ पहले कितना हुआ। नहीं नहीं मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि आप बहुत ग्रेट हो, आर्मी में कितना मेहनत, कितना त्याग, कितना, नहीं बिल दिखाओ, ये सब बातें बंद करो, मेरे को नहीं ये करो। नहीं सर आपने आर्मी के लिए इतना किया, भारत के लिए इतना किया, मैंने जो भी किया आपके गाड़ियों के ऊपर वो फ्री है। आप भी वो गुस्सा करेगा या खुश होएगा? आप बता खुश होएगा कि नहीं? कितना टाइम लगा खुश होने के लिए? इतना गुस्सा, एक सेकंड में खुशी, एक सेकंड की बात है, एक सेकंड में खुशी में आ सकते हो, समझना है बस। ये तो लकी है उन्होंने समझाया उनको, कई जगह पे कोई समझाने वाला कोई नहीं रहता, हमको खुद को समझना है। एक भाई आया था सेंटर पे, एक इक्फाई करके एक एमबीए कॉलेज है वो पढ़ते हैं, तो आया उन्होंने कहा मेरा एक रूममेट है और वो रूममेट है ना वो बहुत बेकार है, बहुत लेजी है, पूरा गंदा है, वर्ल्ड से मोस्ट डर्टी लड़का वही है। मैंने कहा क्यों? तो वो कपड़ा ऐसा फेंक देता है, कपड़े धोता नहीं है, आता है क्लास में लेट और मेरा शर्ट पहन के आता है। मैं पूछता हे तुम मेरे शर्ट क्यों पहने? तो वह कहते अरे दोस्त किस लिए, शेयर करना सीखो ना है? तो ऐसे करके मेरे को ऐसा कर लेता है। तो मैं बहुत हैरान हूँ बेंजी, मुझे बहुत साफ सुथरा कमरा चाहिए और ये गंदा करता रहता है, रूम भी शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ाई पर, और 3 सेमेस्टर है। और मैंने कहा देखो उनको गंदा कमरा चाहिए वो गंदा करता रहेगा, तुमको अच्छा कमरा चाहिए तुमको साफ करना पड़ेगा, तो तुम साफ करते रहो बस, अभी क्या करना है बेंजी, ये कोई सोल्यूशन है? पर मैं साफ करता रहूंगा बस, यही मेरा काम है। मैंने कहा देखो कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, मना क्या करे मैं तो यही हूं ऐसा करना ही पड़े, कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझ के करो आसान हो जाएगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मना यही सक्सेसफुल जीवन जीने की कला है, समझो कैसे। मैंने कहा देखो ये लेजी है, केयरलेस है, एकदम बिल्कुल किसका मानता नहीं है, ऐसे इनके अवगुण का लिस्ट तो बहुत है, डर्टी है। अब इसके अंदर कुछ अच्छा ही है कि नहीं बताओ, कुछ है कि नहीं। सोच में पड़ गया, थोड़ा टाइम सोच के बोला बहन जी ये अच्छा कॉफी बनाता है। मैंने कहा अच्छा कॉफी अच्छा बनाता है, तुमको कॉफी पसंद है? बहुत पसंद। अच्छा अच्छा और क्या, फाइनेंस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा पुअर हूँ, वो कोच करता है। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छा है, और क्या, घर से पैसे टाइम पर नहीं पहुंचता है ना, ये देता है फिर मांगता नहीं। मैंने कहा वाह और कैसे है, तुमको पैसे देता हूँ मांगता नहीं, अच्छा कॉफी बना के देता है। अब देखो आपको अभी साफ करना है कमरा, अब साफ करने के समय ये नहीं सोचो गंदा लड़का है गंदा लड़का, नहीं, साफ करते समय सोचो अच्छा कॉफी बनाता है, फाइनेंस में कोच करता है और पैसे देता है और वापस नहीं मांगता है, ठीक है कि नहीं। ये सोच के करते रहो, इसको कहते समझना। तो ही सेड विल इट वर्क, इट विल वर्क लाइक मैजिक यू गो। तो गया, थोड़े टाइम के बाद फोन किया, मना तो मैंने हो गया फोन किया, दीदी मेरे को आना है आज मेरा बर्थडे है थोड़ा ब्लेसिंग लेना। मैंने कहा अभी आ जाओ, बोले नहीं नहीं टाइम नहीं मिला तो कमरे में थोड़ा साफ करके आई टेक अ शावर एंड कम, ठीक है। तो गए अपने कमरे में, गए वहां से फिर से फोन किए, मैंने कहा क्या हुआ, टाइम चेंज करना है? नहीं बहन जी अभी मैं आने वाला हूँ, पर बहन जी मैं आपको कुछ सुनाना है। क्या सरप्राइज है बहन जी, आपको सरप्राइज गिफ्ट मिला? सरप्राइज गिफ्ट मिला, मैं कमरे में आया पूरा कमरा साफ सुथरा, और एक कार्ड रखा हुआ है टेबल पर और वो उसमें लिखा है दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट यू एंजॉय। When you understand, others change. When you rebel, others rebel. They push you to the corner. तो इसलिए ये जो भी हम संकल्प करेंगे जीवन में लाने में ऐसे एकदम ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। किसी और को चेंज आपको देखना हो, अपने अंदर चेंज लाना है ना, उसमें सफलता होंगी। तो इसलिए मैं एक आपको एक बता के फिर मैं एंड करूंगी। एक लेडी स्टोरी है, रियल नहीं है ये। एक लेडी थी, वो एक मैजिशियन के पास पहुंची और कहने लगी कि मेरे हस्बैंड में कुछ भी प्यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत गुस्से वाला है, उनको ठीक कर दो, आपके पास कोई ऐसा औषध है क्या जो मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे? तो उन्होंने कहा मैं बना के दूंगा, पर मुझे शेर का मूंछ चाहिए, मुस्टैच ऑफ अ लायन। तो मैं कहां ढूंढूंगा, कहां भी ढूंढ लो पर लेकर आओ, हम बना के देंगे। तो फिर उनके गांव के बाहर जंगल है, तो कहते थे वहां एक शेर आके पानी पीते के अंदर, तो जाके रोज जाके देखी कि शेर रियली आया, बहुत दूर खड़े होके देखकर घर वापस आ गई। रोज जाने लगे, दो दो कदम आगे रखती थी, दो दो कदम आगे रख के 6 महीने में बहुत नजदीक आ गए। शेर को भी पता पड़ गया कि कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है करके, शेर को भी आदत हो गई। तो ये धीरे से जाके 6 महीने के बाद ऐसे ऐसे करके जाके उसका मूंछ खींच ली। वो शेर ने कुछ ने कहा ले लो जो कोई बात नहीं, तो लेके आके उन्होंने वो मैजिशियन को दिया, अभी औषध बना के दो मेरे हस्बैंड के लिए। वो अच्छी तरह देखा, अरे ये तो शेर का ही है, मेरा हाँ शेर का है। तो ऐसे देख के उसने ऐसे छोड़ दिया, वो खूब रोने लगी है, मैंने इतना मेहनत करके 6 महीने लेकर आए आप ऐसे छोड़ दिए। बोला देखो मैडम, आप एक शेर को ठीक करने में 6 महीने लगा। और का हस्बैंड क्या है, दो दो कदम, दो दो कदम, दो दो कदम, वो यही करना है ना, धीरे धीरे से। ओम शांति।